हम श्लोक का पाठ करते हैं, बार बार याद करते हैं, लेकिन जो सुखी घर संसारों के होते हैं वो केवल चीजों को याद रखते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो चीजों को समझें। जैसे प्रभुपाद जी साथ ले रहे हैं कि 50-60 साल पहले या उससे पहले बंगाल में एक व्यक्ति थे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। जब हम बंगाली जाते थे अंग्रेजी नहीं जाते थे, तो किसी अंग्रेजी व्यक्ति के दफ्तर में वो नौकरी कर रहे तो एक बार दो अंग्रेजी सहायकों के बीच में कोई बात हुआ, झगड़ा हुआ और वहां अदालत तक पहुंच गई। तो जब साक्षी बुलाने का प्रश्न आया तो दोनों ने इस बंगाली बाबू को बुलाया और जब अदालत में उनसे पूछा गया कि दोनों के बीच क्या बात हुई तो बंगाली बाबू कह रहे कि मुझे अंग्रेजों के आदि नहीं है, लेकिन फिर भी जो बातें इस बीच में हुई मैं आपको सुना रहा और जैसे वैसे ही उन दोनों का वार्तालाप को सुना हर शख्स वैसे कर रहे, लेकिन उनको एक भी शख्स समझ नहीं आया। उन्होंने क्या सुना और क्या उनका स्मरण हुआ उनको समझा नहीं, तो जो भी घर थे लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं आया। सोचे भी कर रहे जल्दी ही अपने मित्रों के साथ में पढ़ता करते और जो भी व्याख्या वो करते कोई दूसरा उनके दूसरा व्यक्ति उनका बालक उन व्याख्या को लेकिन जहाँ भी निमय पंडित दूसरों को चुनौती देते तो उनके जो भी व्याख्या होते थे उनके अगर कोई कोई सुनी है वो उनके निकाल देते। तो इस तरह से हमारे पंडित सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी समझ जाते हैं, जगह जगह वो अपने विद्वत्ता का प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी कभी इस तरह चुनौती देते थे किसी को और किसी का प्रश्न करते थे और जब वो प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते थे तो फिर वो उनको रोकते हैं उत्तम साधना और फिर वो किसी बात की ऐसे सुंदर ढंग से व्याख्या करते हैं और लोगों को पूछ रही है तो आप भूल निकाले तो कोई भी व्यक्ति उसको भूल नहीं निकाल सकता। तो फिर बात निभाई कहते कि आप सब जगह खंडन नहीं कर सकते लेकिन मैं स्वयं मेरी जगह खंडन करूंगा और ऐसे अपने ही आत्मा का खंडन करते कि सब सब रह जाए कि उस खंडन का खंडन को नहीं कर सकता। तो वहां पर मैंने कहा कि मैंने पहले जो व्याख्या की आपका खंडन नहीं कर पाया, लेकिन मैंने इस तरह से मेरी ही व्याख्या का खंडन किया कि आप उस खंडन का खंडन नहीं कर पाए, लेकिन मेरे ही व्याख्या के खंडन का खंडन मैं करूंगा और जो सबसे पहले मैंने व्याख्या की थी उसकी पुनर्स्थापना करूंगा। और हमारे ऐसे कर दिया और उस व्याख्या के खंडन के खंडन में उन्हें कोई रुपया नहीं दिखाया था। जितना भी वो सोचे हैं उनको बताने के लिए क्या दोष इसमें दोष। तो इस प्रकार से मन इतने बुद्धिमान है कि जो चाहे वो कर सकते अपने बुद्धि कसर ऐसे कर सकते कि सभी बाकी लोग बिल्कुल उसको मौन बने हारा बना और कोई उपाय नहीं हारा। इस तरह से मन हर जगह जगह जाते और विद्यार्थियों को उनको चुनौती देते मुकाबला के लिए वो नजर आते हैं। तो पाठशाले के बाद में दोपहर के समय सारे विद्यार्थी का गंगा जी में जाते स्नान करने के लिए तो नगर से उस समय एक शिक्षा का एक बहुत प्रमुख स्थान था। जगह जगह से ब्राह्मण गांव पढ़े करने के लिए आते और बड़े बड़े और हर एक भगवान के पास हजारों की संख्या विद्यार्थी हुआ करते हैं। उस सबके गुरुकुल की पद्धति ऐसी थी कि हर एक गुरु के पास हजारों शिष्य होते थे। तो ये पूछा जा सकता है कि एक अध्यापक हजारों शिष्यों को कैसे सिखा सकता है। अभी हम देखते हैं कि एक कक्षा में यहाँ स्कूल में 30 बच्चों को संभालना उनको इतना सरल है। आजकल ख्याल करें कि 30 बच्चों को संभालना बड़ा कठिन हो जाता है। हमारे बच्चों के बीच में जो शिष्य है अभी या जो अध्यापक है अच्छे तरह से जानते हैं तो वहां कैसे संभाल रहे हैं। पद्धति ये थी कि जो छोटे बच्चे थे उनको बड़े बच्चे सिखाया करते और जो बड़े बच्चे थे उनको और भी बड़े बच्चे सिखाया करते और इन बड़े बच्चों को भी गुरु सिखाया करते। तो इस तरह से बड़े बच्चे छोटे बच्चों को सिखाते तो इस तरह से हजारों बच्चे जो है वो गंगा जी के तट पर आते थे और गंगा जी में स्नान करते थे और मन हर एक दल में जाकर उनसे बात करते थे। मैं वो कहने वाला हूँ प्रश्न पूछने वाला हूँ उसका जवाब देते और वो जवाब देते तो जवाब का संचय करते और उनका बड़ा बड़ा ऐसे हर एक दल में जाकर झगड़ा करके बात करते थे। तो इस तरह से ये जो बच्चों के झुंड थे दल इधर उधर जाते थे आपस में कभी कभी वो झगड़े भी आ जाते थे और छोटे छोटे बच्चे थे तो एक कहता अरे तुम्हारे गुरु तो कुछ नहीं है मेरे गुरु बड़े विद्वान है और दूसरा बच्चा कहता अरे मैं जिस गुरु का शिष्य हूँ मैं अभी तुम्हें अपने व्याख्या से सिखा हूँ। तो इस तरह से आपस में लोग बात कर गए और एक दूसरे के ऊपर पानी छिड़कते फिर पानी छिड़कने बात बढ़ जाती थी फिर एक दूसरे के ऊपर भेड़ भी छिड़कते बात और भी बढ़ जाती थी फिर एक दूसरे के ऊपर मिट्टी छिड़कती। इस तरह से आपस में उसकी मुक्का बढ़ा जलने चलता रहता है। इसलिए गंगा जी का पानी इतना प्रदूषित हो गया पानी से और मिट्टी से कि वहां पर जो सज्जन ब्राह्मण आया करते थे वो उसका स्नान भी नहीं कर सकते थे और जो नवयुवती या बालिका है अपने घर में पानी भरने आते थे वो भी पानी नहीं भर पाए। इस तरह से सारे नगरपुरी में बड़ा उत्पाद पैदा हो गया। तो कोई बच्चे एक दूसरे को मारते गंगा जी ने कूद कर वहां दूसरे लोग चले जाते स्वयं नगर में चलते रहते तो वहां पर कई घाट हुआ करते थे और हर एक घाट में अलग अलग बच्चों के दल हुआ करते थे ब्राह्मणों के लिए। तो युवा क्या करते थे कि अपने घाट में जाकर स्नान करते थे वहां लोगों को सताते थे फिर दूसरे घाट में जाते वहां एक दो घंटे ठहरते फिर तीसरे घाट में जाते वहां एक दो घंटे ठहरते और एक घाट में जाते। इस तरह एक नियम से है निमाय जो भी नवद्वीप में गंगा जी के तट घाट से प्रत्येक घाट में जाते हो और वहां पर जो भी विद्यार्थी के बच्चे थे वो उनको चुनौती देते उनसे बात करते और झगड़ा कर जाते। तो जब जो बड़े बच्चे थे थोड़े वरिष्ठ विद्यार्थी थे वो आपके दिमाग को कहते अरे क्या तुम केवल घर के झगड़े झगड़े कर रहे हो अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो चलो अभी कुछ वृद्धि टीका या पंडित के ऊपर समस्या करो। वास्तव में संस्कृत के अध्ययन में जब किसी श्लोक के ऊपर संक्षिप्त रूप में व्याख्या की जाती है तो उसको वृद्धि कहते हैं। जब किसी श्लोक के ऊपर व्याख्या विस्तृत रूप में की जाती है तो उसको टीका कहते हैं और जब किसी श्लोक को जब विषय को काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे पाठी कहते हैं। तो ये व्याकरण जो हमारे पंडित जी रहते हैं गंगादास पंडित के स्टोर में वो कलाम नाम का व्याकरण था। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह के व्याकरण की रचना की हुई है पाठी की गीता है तो कलाम व्याकरण जो है ये भी एक प्रकार का व्याकरण है और इसलिए भी टीका किसी और एक विद्वान ने की है वृद्ध किसी और विद्वान ने की है और पांडे जी किसी विद्वान ने की है। तो ये वरिष्ठ विद्यार्थियों विज्ञानों की हिमायत में, कि अगर वास्तव में उनका बुद्धिमान हो तो चलो स्पष्टीकरण करो टीका और पानी का। तो न्याय कहा ठीक है बोलो प्रश्न क्या है आपका। तो बड़े विद्यार्थी ने कहा कि आप धातु सूत्र के ऊपर बैठा, धातु मतलब संस्कृत भाषा में किसी कार्य को करने के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है मूल शब्द को धातु कहते हैं और उस शब्द से अनेक शब्द प्राप्त हुए। जैसे कि धातु है जिससे अनेक शब्द आते हैं, दुख का मतलब है ज्ञान प्राप्त करना, दुख से आता है देव, दुख से आता है विद्या, विद्यालय विद्यालय। दूसरा उदाहरण शत धातु, शत मतलब नहीं रहता, तो शत से आता है शासन, शत से आता है शिष्य। वैसे हर एक धातु के अन्य शब्द करते हैं। तो व्याकरण में जिन धातुओं को समझना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो वरिष्ठ विद्यार्थी ने कहा चलो एक धातु सूत्रों के ऊपर हम व्याख्या करवा। तो निमन ने ऐसे सुनकर ढंग से व्याख्या की कि वो सब सब है, लेकिन फिर भी सोचा कि हिमाचल छोटा बच्चा है तो क्या कैसी कहेंगे अब तक हिमाचल किसान को चले। तो इस तरह से निमन हर रोज ऐसे विदा करते थे, हमेशा सबको जाकर टोकते मजाक उड़ाते थे, उनको ललकारते थे इत्यादि। ऐसे चंद्र महाप्रभु की गंगा जी ने विहार चलते रहता था। वृंदावन दास हमको बताते हैं चंद्र भागवत में कि बहुत लंबे समय से गंगा देवी के हृदय में एक बहुत ही अभिलाषा है। 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में उत्तीर्ण हुए थे तो उन्होंने यमुना जी के ऊपर बड़ी कृपा की, क्योंकि यमुना जी के जल में उन्होंने कई क्रीड़ाएं की थी, दावा विहार इत्यादि। और यमुना जी के ऊपर ऐसी अति कृपा देखकर गंगा जी हृदय में भी एक लालसा उत्पन्न हुई। हालांकि ब्रह्मा जी शिव जी गंगा जी की उपासना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, लेकिन स्वयं गंगा देवी यमुना जी के भाग्य को प्राप्त करना चाहेंगे, इसलिए वास्तव उनकी हृदय में थी। तो जैसे महाप्रभु वन कृष्ण है वही श्री कृष्ण जो 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में आए थे तो उन्होंने बताया कि इच्छा का समझ गया और इसीलिए मन के रूप में आकर ये अलग अलग तरह की जल क्रिया है गंगा जी ने उन्होंने की। इस तरह गंगा जी के ऊपर भी उन्होंने अति कृपा बताया, तो गंगा जी के भाग भी बुल गए। तो इस तरह से जब अपने पाठशाला से गंगा जी के तट पर जाते थे, स्नान करते थे, नौ के आते थे, तो मन अपने पढ़ाई में बैठ जाते थे और ऐसे मग्न हो जाते थे अपने पढ़ाई में कि उनको बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि संसार क्या हो रहा है, विद्यार्थी को कैसे पढ़ाई करना चाहिए निभाए जाए। एक बार अपने पुस्तकों के साथ बैठ जाते थे तो पुस्तकों के अलावा इधर उधर उनका ध्यान कहीं नहीं जा रहा था। जगन्नाथ मिश्र उनको देखकर बड़े खुश हो जाते थे, लेकिन फिर भी हमेशा मन में एक डर रहता था कि मिश्र ध्यान नहीं लगा। तो एक बार निमाय जाकर अपने माता पिता से कहा कि मुझे एक स्वप्न आया, वास्तव में हुआ कैसे कि भगवान विष्णु को वो चढ़ाया हुआ ताबूत या पान उसके बारे में प्रसाद दे दिया और उससे नशा कर गए और वो प्राय निर्वश हो। उस समय जब दशी माता और जगन्नाथ मिश्र ने पानी छिड़क दिया तो होश आ गए और उसने निमाय कहा कि मैंने एक बहुत अद्भुत दृश्य देखा, विष्णु मेरे सपने में आए, विष्णु जैसे पल पल से रहकर उन्होंने कन्यास ग्रहण कर लिया है, बल का नाम हो गया था शंकर आदि। तो निमा कहने लगे विष्णु मेरे सपने में आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले गए और कहने लगे आओ आओ तुम भी कन्यास ले लो। और मैंने कहा भैया मैं कैसे कन्यास ले सकता हूँ, हमारे माता पिता है अकेले हैं, मुझे उनका देखभाल करना चाहिए और वैसे भी मैं एक छोटा बच्चा हूँ, मुझे कन्यास के बारे में क्या मालूम, मुझे जाकर माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो ईश्वर बड़े प्रसन्न हुए इस बात को सुनकर और मुझे वापस घर ले जाया और यहाँ पर सो गया। तो रही माता और जगन्नाथ मिश्र बड़े खुश हुए ये सुनकर कि हिमाय ने घोषणा की कि मैं केवल आश्रम में प्रवेश करूंगा और मेरे वापस घर ले जाया। तो इस तरह से महाप्रभु लीला करते रहे। थोड़े दिन बाद जगन्नाथ मिश्र अपने प्राण प्रदान नहीं पाया। प्राण क्या किया? सबसे पहले तो ये बड़े दुख की चेहरे में संन्यास ले लिया। जितना भी वो अपने आप को शांत करने का प्रयास करते फिर भी दुख बहुत ध्यान था और साथ साथ में उनको एक लक्षण भी पड़ गया था कल रह जा रहे थे। जो जिस लक्षण में उन्होंने देखा था कि हिमाय ने बेहतर मनवा लिया है और संन्यास दिया है और इस तरह से जगह जगह जाकर भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहा है तो ये संशय हृदय को खा तो इस दुख के मारे इस अपेक्षा से इस जानकारी से मनुष्य कभी मन संन्यास ले सकता है जगन्नाथ मिश्र ने अपना प्राण त्याग दिया। और जब जगन्नाथ मिश्र से संसार में गुजर चले गए तो शची माता और मन दोनों बड़े शोक कर रहे थे। वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि हिमाय ने इस तरह शोक किया जैसे कि कटलाल के नदी ने किया था जब दशरथ महाराज निकल गए। रामायण की कथा से आपका तो मालूम है जब दशरथ महाराज निकल गए तो उस तरह प्रभु रामचंद्र वनवास चले गए। चित्रकूट जब उन्होंने ये खबर सुनी भरत से तो इतने दुखी हुए कि बहुत रो रहे थे बहुत शोक व्यक्त कर रहे थे। हालांकि वो भगवान है तो लेकिन क्योंकि भगवान भी होते हुए मनुष्य लीला कर रहे हैं इसलिए साधारण मनुष्य की तरह वो भी निर्वाह कर रहे थे क्योंकि उसी तरह से हिमाय पहले दुखी ऐसे शोक व्यक्त किया है। सही माना कि शोक की कोई सीमा नहीं थी कोई दुखी थी जय जय लोग ने आप लोगों को साधना करने का प्रयत्न किया लेकिन सही माना शांत नहीं हो पाया। सही माना के जीने के लिए एक ही कारण था केवल हिमाय के सुंदर उदाहरण को देखते सारा उनका दुख मिट जाता है। दिन रात केवल हिमाय के लिए हिमाय की सेवा करते हिमाय के लिए केवल जीवन हिमाय और शशि माता इस तरह से दोनों साथ साथ रहते अपने दुख में हमेशा एक दूसरे का साथ देते। हिमाय बार बार शशि माता से कहते हे माता आप बिल्कुल चिंता नहीं करो हमारे पिता का जो विनाश हुआ है मैं आपको बिल्कुल इस बात को महसूस होने नहीं दूंगा और मैं आपको संसार की सारी चीजें ले आकर दूंगा आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। यहाँ तक कि मैं ऐसी चीजें आपको आकर दूंगा जिसके अंदर ब्रह्मा और शिवजी कर रहे हैं तो बिल्कुल चिंता नहीं करता। इस तरह से श्री माता शांत होगी और आनंद में वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि जिनका स्मरण करने वाले से सारे वासनाओं की पूर्ति होती है तो वही व्यक्ति जब शशि माता के साथ है पुत्र के रूप में तो भला शशि माता के हृदय में अपूर्ण कैसे हो सकता था। तो शशि माता अपने पति के ध्यान से अपूर्ण जल्दी से भूल गई तब हिमाय के घर में रही केवल दिन रात हिमाय के लिए जीने में भी सेवा करने लगी। लेकिन हिमाय तो है साक्षात विष्णु परम भगवान भगवान की लीला बड़ी अपार होती है उनका समझना बड़ा कठिन होता है कब भगवान कौन सा कार्य करेंगे और क्यों करेंगे ये सब समझना साधारण व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन है। तो हिमाय ने भी ऐसे ही कठिन समझने वाले कठिन समझने के लिए कठिन लीला ने थोड़ा सा हार कर दिया। कभी कभी बड़े क्रोधित हो जाते हैं। एक बार हिमाय अपने माँ के पास आए और कहने लगे मैं गंगा जी में स्नान करने जाने का इच्छुक हूँ तो मुझे तेल और आमली अलग और हाँ गंगा जी की पूजा करना चाहता हूँ इसलिए थोड़ा चंदन और फूल की माला भी ले लेंगे। तो सची माता ने कहा कि अरे हिमाय दो मिनट तैयार करो मैं अभी फूलों का माला लेने जाती हूँ अभी लाने से करूँगी। तो हिमाय ने जब शब्द सुने मैं लेने जा रही हूँ तो रुक जैसे जैसे शिशु के संपर्क में रहने से देह सुमिरित हो जाते हैं, उसी तरह निभाई छोड़ देते और कहने लगे तुम अभी रहने जा रहे हो, ये शब्द सुनकर ऐसा क्रोध भयंकर क्रोध प्रकट किया, एक लाठी हाथ में लेकर जो भी घर में घरे से बच्चे थे सब को लगे दूध घी नमक दाल चावल जो भी सब कुछ था घर में सारे मटके तोड़ रहे लाठी लेकर, और लाठी के ऊपर भी चढ़ाए जा सकते कोई मटके जिनमें नाना प्रकार के पदार्थ रखे जा रहे वो भी तोड़ रहे, घर में नदियों रहने लगे दूध की घी की पानी की, और जो धर्म क्रियाओं के लिए मटके थे वो भी तोड़ दिए, और इससे संतुष्ट नहीं हो फिर घर के ऊपर ही प्रहार कर रहे हैं, दरवाजे तोड़ लिए खंभे पर मारने लगे लाठी लेकर, और सही माता डर के मारे कौन में जाकर चुप करकर देख रहे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कौन समझ सकता है भगवान कैसी है क्यों कर रहे हैं, किसी के समझ के बात नहीं, और फिर सब जगह अपने घर को ही प्राय नष्ट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो धर्म के रक्षक है साक्षात वन धर्म है वो भी मान धर्म है, इसलिए उन्होंने अपने हाथ ऊपर हाथ नहीं लिया है, बाकी सब कुछ तोड़ छोड़ कर दिया है तय तय कर दिया है, लेकिन मां पर छुआ और मेरी मां मेरी ऊपर वहां पर उन्होंने काम कर रही है, और आगे चलते बहुत ही क्रोध शांत नहीं तो बाहर आंगन में गए, और आंगन में फिर प्राय बेहोश होकर वकील बने और शरीर कांप रहा है, फिर लोग मैदान पर तो वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि वही भगवान श्री कृष्ण जिनके त्वचा के छेद से अलग कोई ब्रह्मा निकल गए हैं, जिनके चरण कमलों की सेवा लक्ष्मी देवी करती है, जिनका दिव्य शरीर अनंत शेष के ऊपर शयन करता है, वही पर भगवान आज शशि माता के आंगन में लोग जमीन पर सोए हुए हैं, बड़ा सुंदर दृश्य लग रहा था उनका स्वर रंग का शरीर और उसमें धूली लगी हुई थी तो बड़ा आकर्षक दृश्य था, जब ये तोड़ फोड़ हो गया शशि माता के घर में शशि माता के हृदय में दुख नहीं हो उसे आदत पड़ गई सहन कर रही थी बीमारी की नजर जिस तरह से यशोदा माता कृष्ण की अकल्य लीला ने सहन कर रही यहाँ तक शशि माता पृथ्वी माता के बराबर सहनशील थी, सहनशीलता का प्रतीक पृथ्वी माता है क्योंकि पृथ्वी के ऊपर निवास करने वाले लोग और प्राणी इतना आक्रमण करते हैं इतने सारे पाप और अकल्य करते हैं पृथ्वी के ऊपर, लेकिन पृथ्वी देवी शांति से सहन करती है, तो शशि माता भी पृथ्वी माता की तरह हिमालय क्षेत्रों को सहन करेंगे, और धीरे से जब हिमालय को होश आता है तो चुपचाप जाकर हिमालय के पास जाती है और कहती हिमालय ये तो दोनों पहाड़ है और ये जंगल है और जाते कुछ नहीं कहती बात तो हिमालय बड़े व्यथित हो जाती है और फिर गंगा जी का स्नान करने जाती है, गंगा जी स्नान करके लौट के आते फिर विष्णु की आराधना करते तुलसी को जल अर्पण करते अपने प्रसाद ले जाए जाते हैं, और प्रसाद लेने के बाद में फिर जब तांबूल भगवान को चढ़ाया हुआ वो चढ़ाने बैठते तो फिर शशि माता आपके धीरे से होती परेशान तो क्यों उतना तोड़ फोड़ करते हो, ये घर ये सब कुछ तुम्हारा है उसका क्या हुआ तुम्हारा हुआ मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ तो अपना ही घर का नुकसान करना क्या पता है क्या पता तुम नहीं करता है, और वैसे भी तुम्हें आज शाम पाठशाला जाना है तुम कहते थे तुम्हें जाना है लेकिन घर में आते नहीं ना अब बच्चा बोलने कहा से खा बोले तो हिमालय के बाद दिया अरे महाराज तुम क्यों चिंता करती हो कृष्ण ही सबके पालन पोषण करने वाले हैं भरण पोषण करने वाले कृष्ण तुम क्यों चिंता करती हो वो नहीं करते और हमेशा सोचती थी ये बार बार जब घर की चीज की कमी हो जाती है और जब भी ऐसे अवसर आता है कि घर तोड़ फोड़ कर बैठा है या तोड़ फोड़ की बिना भी कोई कमी हो जाती है तो उसी दिन शाम को मन कहीं कहीं से ऐसे थोड़ा ना आता है, चाहे चोरी करता है, उधार लेता है या फिर लोग शक्ति से वो प्रकट कर लेता है, यहाँ जाने का मन नहीं है तो हमेशा डर रहे किसी के सोना घर जाने की वजह से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, अपने शिष्य निमाय के बुद्धि को देकर बड़े प्रसन्न हो गए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनका सामना कर सकता था और हर एक व्यक्ति की बातों को खंडन कर किसी को बोलने का भी मौका नहीं मिल जाता और जब वो व्याख्या करके तो सारे नगर जी को उनकी व्याख्या को समझने वाला नहीं था, केवल एक व्यक्ति ने सारे नगर जी को समझ सकते और वो भी उसे तो वृंदावनदास ठाकुर बोलते हैं कि गंगादास पंडित बड़े भाग्यशाली आपने बहुत ही गहराई से जो व्याख्या है वो गंगादास पंडित के सामने चर्चा करते हैं और इस तरह गंगादास पंडित बड़े खुश हो जाते हैं। उस समय नवद्वीप में जो परिस्थिति थी बहुत बुरी थी, जैसे थोड़ा बहुत कलयुग बचा रहा है। वृंदावनदास ठाकुर बताते हैं कि वहां के लोग केवल बहुत ही चीजों में रुचि रखते थे और अपने बच्चों के शादी के लिए, अपने बच्चों के मनोरंजन के लिए और बहुत ही चीजों के लिए बहुत पैसा खर्च कर रहे थे, लेकिन अगर भगवान को कोई उत्सव हुआ तो उसमें पैसा खर्च करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। आजकल के हमें देखते हैं बच्चों की शादियों के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें लोगों को प्लेन में लेना जाना, एक बार एक व्यक्ति अगले व्यक्ति ने एक प्लेन में विवाह कर दिया, खास करके हवाई जहाज तो करोड़ रुपए खर्च कर, लेकिन भगवान के लिए उत्तर जन्माष्टमी में राम मंदिर बनी है तो नहीं करते। ये परिस्थिति देख कर लोग बड़े दुखी हो रहे हैं। वहां पे चक्रग्राम के और अन्य जिले के लोग आते थे, वैष्णव आते थे, वो निकल देख कर बड़े दुखी हो जाते थे, लेकिन क्या करें ऐसी परिस्थिति वहां पर थी। तो निमाय अपने बार बार कला सब जगह जाकर प्रदर्शन करते थे। एक बार ऐसे हुआ कि उन्होंने मुरारी गुप्ता को देखा, मुरारी गुप्ता कमलाकांत कृष्णानंद इत्यादि ये उनकी ही कक्षा में पढ़ा करते थे, गंगादास पढ़े थे वो। तो निमाय इतने विद्वान थे कि निमाय के लिए हमेशा विद्यार्थियों की झुंड लगा था जो उनके आत्म से आगे सीखते थे, लेकिन मुरारी गुप्ता ये नहीं सीखने आए, वो अपने बैठे कभी निमाय की बात नहीं आए। तो निमाय को ये बात अच्छी नहीं लगी, वैसे बात निमाय मुरारी गुप्ता के साथ जाके पास में जाके बैठे अपने विद्यार्थियों के सामने और जोर जोर से बोलने लगे कि आजकल जो ब्राह्मण कहते हैं कि उनको संधि ज्ञान नहीं है, अक्षरों को कहते जोड़ना, शब्दों को कहते जोड़ना और ये लोग अपने आप को बहुत विश्वास करते हैं। जो व्यक्ति किसी गुरु का आश्रय नहीं लेता है और अकेले में ही सीखना चाहता है वो गलत शायद है, वो उनका ही अपना विज्ञापन हो जाता है। तो ये जो टीका थी वो खास कर मुरारी गुप्ता के लिए, मुरारी गुप्ता जगह में बहुत खड़े रही बात बहुत तीस लेकिन फिर भी मुरारी गुप्ता के साथ रहे। मुरारी गुप्ता वास्तव में रुद्र के अंश है, मुरारी गुप्ता वास्तव में हनुमान जी के अंश के अंश है और हनुमान जी रुद्र के अंश है, इसलिए मुरारी गुप्ता रुद्र का अंश है। रुद्र तो बड़े गति से रुद्र हो जाते हैं लेकिन फिर भी मुरारी गुप्ता रुद्र नहीं और इसको देखकर निमाय बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी और आगे उनको कहने लगे अरे मुरारी गुप्ता तुम तो वैद्य हो, वैद्यों के परिवार से हो, तुम यहाँ व्याकरण के लिए क्यों आए हो, व्याकरण तुम्हारी बात है, व्याकरण समझने के लिए बड़ी बुद्धि चाहिए। ये व्याकरण शब्द तुम्हारे महात्मा की बात नहीं है, तुम जाओ सब वास्तविक और अधीर के बारे में पढ़ो। यह व्याकरण के शास्त्रों में कुछ सब वास्तविक के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो गाड़ी उत्तर ने यह सुना तो कहने लगे तेरे माजी तुम इतने घमंडी क्यों, तुम हो बड़े ब्राह्मण बड़े गहरे जा सकता हूँ, लेकिन फिर भी आज तक तुमने कोई मुझसे प्रश्न नहीं किया है, तो फिर कैसे कह सकते हैं तुम लोगों को कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें प्रश्न कहता हूँ कुछ कहो। तो उस समय मुरारी गुप्ता बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे थे, तो मुरारी इतना सुंदर खंडन किया, फिर ऐसे स्पष्ट प्रतिपक्ष होने लगा बाद विवाद मुरारी गुप्ता कुछ कहते और फिर हिमालय का खंडन करते, फिर मुरारी को कुछ कहते और हिमालय से कुछ खंडन करते, मुरारी को फिर उसका खंडन करते, ऐसे वाद विवाद चलता था, किसी के बीच में हार नहीं हुई। लेकिन अंत में जाकर हिमालय बड़े बड़े खत्म हुए और फिर उन्होंने अपने कर्म से मुरारी गुप्त का शरीर स्पर्श किया और उस समय मुरारी गुप्त के हृदय में ऐसे आनंद की अनुभूति हुई और मुरारी गुप्त के मन में विचार आया ये लड़का बड़ा असाधारण बुद्धि रखी असाधारण ज्ञान है, जो भी बात कहे उसके लिए किसी पास जवाब नहीं, ऐसे कोई बात नहीं जिसका जवाब ये बच्चा नहीं दे सकता है। तो इस बात में लचक होनी चाहिए, मुझे भी विश्वमय का आश्रय लेना चाहिए, हिमाई का आश्रय लेना चाहिए और ये स्पष्ट करने में मदद करो, मुझे इतना आनंद हो। तो हे विश्वमय आज फिर मैं तुम्हारा आश्रय, मैं तुम्हारे यहाँ आश्रय तुझे कह रहे थे मुरारी गुप्त भी हिमाई के साथ में पढ़ने लगे। उस समय हिमाई ने अपना स्वयं का पाठशाला खोल दिया, वहाँ पे बहुत संजय नाम के ब्राह्मण थे, उनके घर में जो दुर्गा मंडप हुआ करता था उस मंडप में आंगन में उन्होंने अपना पाठशाला खोल दिया और मुकुंद संजय के लड़के का नाम था पुरुषोत्तम संजय, जो हिमाई के बड़े भक्त थे। तो सारे ब्राह्मण अलग अलग जगह से इस पाठशाला में आते थे और हिमाई हमेशा उनकी उनको सिखाया करते थे, उन्होंने अलग अलग कलर किए और उनको सिखाया करते थे। तो इस तरह से जब दिमाग दिखा करते थे तो ना जगह से लोग आके वहाँ पढ़ाई करते थे और हमेशा वो धर्मों की निंदा करते थे और कहते थे ये जो लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार है नाम का बदली स्वीकार कर लिया है, इनको संधि ज्ञान नहीं है और अपने आप को बड़े दर्शन का विद्वान समझते हैं। वैसे तो मेरे सामने आए कोई और सर खड़े सब व्यक्ति व्यक्ति को मिश्रा या भ्रष्टाचार समझ सकता हूँ। तो हमारे पंडित के विद्वत्ता को देखकर लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन इतना भ्रमण का प्रदर्शन करने के बाद भी कोई भी मेरे सामने नहीं रखता था हमारे हमेशा प्रेम कर रहा था। जिस व्यक्ति के लिए अगर हमारे एक बात बोले तो वो व्यक्ति प्रेम के भाव को दिखाता है, ये है और इस तरह से हिमाय अपने विद्वत्ता की लीला का प्रदर्शन करने लगे। उस समय श्री देव ने देखा कि हिमाय की उम्र जो बढ़ती जा रही है तो अभी करवा कर दे रहा है। तो वहां पर एक ब्राह्मण के जिनका नाम था बनवाली आया घटक, एक बार वो श्री माता के घर में आए और कहने लगे कि आपका पुत्र हिमाय अब बड़ा होने जा रहा है, उसका उद्धार कर लेना चाहिए। मेरे मन में एक विचार है, यहाँ वो बहुत सज्जन सरल और विद्वान ब्राह्मण रहते हैं और उनका नाम है बल्लभाचार्य और उनकी एक पुत्री है, उनकी एक कन्या है जिसका नाम है लक्ष्मी प्रिया, वो साक्षात लक्ष्मी देवी की तरह सारे अच्छे गुणों के संपन्न है। इसी मैं चाहता हूँ कि अगर हिमाली का बुरा लक्ष्मी प्रिया हो जाए तो बड़ा बड़ी सीमा हो। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि ये मेरा बच्चा जो है पित्र ही है, इसके पिता का देहांत हो गया है, अभी विद्यार्थी है तो पढ़ने आगे चलते विवाह की बात करेंगे।
तो बड़े निराश होकर वनमाली घटक वहां से चले गए। ये वनमाली घटक वास्तव में कौन थे? रामलीला में विश्वामित्र थे, क्योंकि विश्वामित्र मुनि ने ही भगवान श्री राम का विवाह सीता देवी से कराया और कृष्ण लीला में वो ब्राह्मण थे जिनको के रूप में देवी ने कृष्ण के पास भेजा जाए संदेश देकर कि मेरा विवाह मेरे पिता और मेरे भाई शिशुपाल से करना चाहते हैं, तो कृपा से आप कृपा कीजिए और यहाँ आकर मुझे मिल रहे हैं, मैं आपसे भी विवाह करना चाहती हूँ। तो वही ब्राह्मण अभी वनमाली घटक के रूप में क्षेत्र की लीला में आए। तो वनमाली घटक जब घर के बाहर जा रहे थे निराश होकर, बैल से निमाई पंडित अपने घर में लौट गए थे। तो निमाई ने पूछा, अरे ब्राह्मण जी, पंडित जी आप कहाँ से आए हैं? तो यहाँ मैं आपसे बाधा से लेकर आया हूँ, मैंने आपके विवाह का प्रस्ताव रखा लेकिन उनको पसंद नहीं आया। तो निमाई ने दो क्षण को जाते हाथ से लगा और जैसी माता के पास जाकर निमाई ने कहा, अरे माता, विवाह का प्रस्ताव आपने स्वीकार नहीं किया तो इतना इशारा जो है किसी बात का नहीं काम था। तो मैंने कहा ठीक बात है, आपके आज हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने बनवाली घटक को फिर से बुलाया और कहा कि कल जो आपने प्रस्ताव मेरे सामने रखा था उसमें आगे बढ़िए। तो बनवाली घटक बड़े प्रसन्न हुए, जल्दी से गए बल्लभ आचार्य के घर में श्री राधा बनवाली घटक गए बल्लभ आचार्य के घर में और उन्होंने कहा कि है बल्लभ भाई, आप बड़े नम्र समझते हैं, आपकी पुत्री के लिए एक वर ढूंढ रहे हैं, यहाँ नगरदीप में जगन्नाथ मिश्र और सखी देवी का पुत्र निमाई है विष्णु जो बड़ा विद्वान है और सारे सखी गुणों का सागर है, इससे विवाह करना आपकी पुत्री के लिए उचित होगा, इसलिए जल्दी से जल्दी इस मामले में आगे बढ़े। तो वल्लभ भट्ट ने ये देखा बड़े खुश होंगे, सुनो मैं तो सौभाग्य है, मैं समझता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण मुझसे प्रसन्न हुए होंगे और साक्षात लक्ष्मी देवी और पार्वती देवी मेरी कन्या के ऊपर प्रसन्न हुए होंगे, इसलिए ये अभी प्रस्ताव हमारे सामने आया है। अब ये वल्लभाचार्य वो वल्लभाचार्य नहीं है जिनका जिनकी मुलाकात जैसे महाप्रभु से हुई थी और जिन्होंने विष्णु को बताया है निष्ठा दी थी और उसकी मान से उन्होंने वो वल्लभ आचार्य अलग है। ये वल्लभ भट्ट जो है ये वल्लभ मिश्रा वास्तव में ये भीष्मक है, भीष्मक क्योंकि रुक्मिणी के पिता है। अधिक बचा बताया जाता है कि जनक महाराज थे जो की सीता देवी जी के पिता, ये चैतन्य लीला में वल्लभ भट्ट का रूप लेकर आए हैं और उनकी पुत्री लक्ष्मी भी है वो वास्तव में लक्ष्मी देवी थी। तो इस तरह से वल्लभ भट्ट बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे कि आज से आज आप जाके प्रस्ताव को सामने रखिए लेकिन मुझे एक बात कहनी है और कहने में लज्जा होती है और वो ये है कि मैं बड़ा गरीब हूँ, इसी में गहरी में कुछ नहीं ले सकता, ज्यादा से ज्यादा मैं 5 घड़ी का एक फल ले सकता हूँ, तो क्या वो सखी देवी को मंजूर होगा? तो मनमान घटक ने कहा बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो मनमान घटक ने जाकर सारे योजना सारे व्यवस्था कर ली और विवाह का दिवस नजदीक आया। विवाह के दिवस के पहले अधिवास उत्सव मनाया गया। जब भी कोई शुभ कार्य होने लगता है या कोई मंगल दिवस होता है उसके पहले दिवस एक अधिवास मनाया जाता है जिसमें फूलों की माला और चंदन अर्पण किया जाता है। तो ये अधिवास का महोत्सव मनाया गया और वल्लभ भट्ट भी वहाँ पर आए और निमाई को चंदन और फूल इत्यादि अर्पण किया गया। बाद में विवाह का दिवस आया और सूर्योदय के समय निमाई वल्लभ आचार्य के घर में गए। बंगाल में प्रथा है कि जो वर होता है वो वधु के घर में होता है और विवाह वधु के घर में होता है, अलग अलग प्रांतों में प्रथा अलग अलग होती है। तो जब निमाई वहां पहुंचे तो वल्लभ भट्ट और अन्य जो निवासी थे बड़े प्रसन्न हुए, हर्ष उल्लास से उनका स्वागत किया और फिर विवाह के जो भी विधियां थी निमाई को भी उठाया गया और फिर अन्य जो रिश्तेदार थे उन्होंने लक्ष्मी किया उठाया और साथ साथ प्रतिष्ठा कराया निमाई का और फिर